समाचारों में स्कॉट मॉरिसन ने सिडनी में बाढ़ प्रभावित हॉक्सबरी क्षेत्र का दौरा किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि उनका देश रूस के साथ संघर्ष में एक रणनीतिक मोड़ पर पहुंच गया है। और भारत गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक भवन होगा राष्ट्र को समर्पित। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। स्कॉट मॉरिसन ने सिडनी के हॉक्सबरी क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें एजेंसियों और सेवाओं द्वारा भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित निवासियों की मदद के लिए किए जा रहे काम के बारे में बताया गया है। श्री मॉरिसन ने इस सवाल को भी संबोधित किया कि न्यू साउथ वेल्स में राष्ट्रीय आपातकालीन क्यों घोषित किया गया था और क्वींसलैंड में इसे क्यों नहीं घोषित किया गया। और उनका कहना है कि ऐसा इसलिए क्योंकि क्वींसलैंड ने इसके लिए नहीं कहा।
That's the way it works. If the state wants it to be done, then they can request for it to be done, and no such request was made by the Queensland government. The first person to talk about putting it in place was the federal government.
प्रधानमंत्री का कहना है कि नागरिक हमेशा बाढ़ बचाव और वसूली रणनीतियों के केंद्र में ही रहेंगे, चाहे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रक्षा बल के कर्मियों को भेजने में लगने वाले समय की आलोचना होती रही है। ऑपरेशन फ्लड असिस्ट के रूप में क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में हजारों सैनिकों को तैनात किया गया है, लेकिन सरकार ने उन्हें जल्द नहीं बुलाया, इस बात की आलोचना हो रही है। सिडनी में बाढ़ प्रभावित हॉक्सबरी क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने आज पत्रकारों से बात करते हुए इस आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि स्थानीय लोग स्वाभाविक रूप से ही आपदा क्षेत्रों में तेजी से काम करने में सक्षम होते हैं।
In Australia, the community response mixes together with the local government response, with the state government response, with the federal government response. It's not one or the other. The reason we're able to push through so many of these events is they all come together. And of course, those who are first here are always going to be the local community. Neighbours helping neighbours. That has always been an important part of our natural disaster response and always will be.
इस बीच न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में सफाई के प्रयास तेज किए जा रहे हैं क्योंकि बाढ़ का पानी कम हो गया है और क्षति का पूरा आकलन हो गया है। क्वींसलैंड में तैनात 1400 और न्यू साउथ वेल्स में 4500 ऑस्ट्रेलियन रक्षा बल के जवान अब दोनों राज्यों में स्थानीय स्वयंसेवकों और परिषदों की सहायता कर रहे हैं। अकेले उत्तरी न्यू साउथ वेल्स के निस्मोर से मलवा इकट्ठा करने के लिए कम 45 ट्रकों को लगाया गया है। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे का कहना है कि सरकार व्यवस्था बहाल करने के लिए अपने पास मौजूद हर संसाधन लगा रही है।
Just want to assure all residents, all the communities right across here, we are putting everything, every resource we can to get this cleanup conducted as quickly as possible. It's obviously not going to take days. It's going to take weeks, if not longer.
New South Wales में आधिकारिक रूप से घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के साथ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के गवर्नर जनरल ने कल शुक्रवार देर रात प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ बैठक के बाद ये घोषणा पत्र जारी किया। राज्यों ने अपने दैनिक कोविड-19 आंकड़े भी जारी किए हैं। न्यू साउथ वेल्स में 12,850 नए संक्रमण और 4 मौतें दर्ज की गई हैं। राज्य में शुक्रवार को 14,000 और गुरुवार को 16,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। विक्टोरिया में कोविड-19 से 11 मौतें हुई हैं और 6,075 नए मामले सामने आए हैं। दोनों ही राज्य सभी को पूरी तरह से टीकाकरण के लिए कह रहे हैं। विक्टोरियन स्वास्थ्य मंत्री मार्टिन फोले का कहना है कि राज्य सरकार ने मेलबर्न और क्षेत्रों में बनिंग्स स्टोर में कई पॉपअप क्लिनिक स्थापित किए हैं ताकि किसी के लिए भी तीसरी खुराक प्राप्त करना आसान हो सके।
What we need to do, particularly as we head in towards the winter season, is keep those vaccination levels up as high as we possibly can. And it's all about making sure that we have accessible and easy to get to locations.
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उनका देश रूस के साथ संघर्ष में एक रणनीतिक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि रूसी सेना शहरों पर बमबारी जारी रखे है और राजधानी कीव पर संभावित हमले के लिए फिर से संगठित होती दिखाई दे रही है। घेरे हुए दक्षिण शहर मारियोपो में नगर परिषद का कहना है कि रूसी गोलाबारी के परिणाम स्वरूप कम से कम 1500 नागरिक मारे गए थे और एक 12 दिवसीय नाकाबंदी के कारण सैकड़ों हजारों लोग फंसे हुए हैं। मारियोपो के डेप्यूटी मेयर सरगई ऑर्लोव का कहना है कि मानवीय स्थिति लगातार खराब हो रही है।
Without any utility, without connection, without everything for 8 days, they do not know about this news anything. And you should know that 5 to 7 days before, the best wish of our people was to stop somehow the war, to stop bombing, to stop shelling. But today and yesterday, their best wish is to find some food and water.
भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की इमारत का उद्घाटन करेंगे और विश्वविद्यालय में एक भवन भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। और भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3614 नए मामले सामने आए हैं। भारत में वर्तमान में एक्टिव केस 40,559 हैं और रिकवरी रेट वर्तमान में 98.71% पर है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के लगभग 73 सेंट और भारत के लगभग 56 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में, विमेंस वर्ल्ड कप 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना तीसरा मुकाबला खेलने से पहले भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज ने सबसे अधिक वर्ल्ड कप के मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने भारत के लिए 24 वर्ल्ड कप मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है। भारत की टीम में इस समय 2 सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। दूसरी झूलन गोस्वामी ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे अधिक वर्ल्ड कप विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। और अब मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी रविवार को पर्थ में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। एडिलेड में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। होबार्ट में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। कैनबरा में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। सिडनी में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री। ब्रिस्बेन में बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। और डार्विन में 1-2 बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।